उसका उसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी किसी छोटे बच्चे को आप कोई ऐसा खिलौना दे दें जो खिलौना उसको बहुत अच्छा लगता हो, तो फिर वो बच्चे को ये ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास क्या है, वो आपको भी भूल जाता है। आपने उसको खिलौना दिया है, परंतु खिलौना खेलते खेलते आप उसके सामने बैठे रहेंगे, परंतु आपको भी नहीं देखेगा। तो उसके सामने कोई पर्दा नहीं लगा है, ऐसा नहीं कि पर्दा से हमने बंद कर दिया है, परंतु उस खिलौने के प्रति उसकी जो इच्छा है, उस एब्जॉर्प्शन है उस खिलौने को लेके, उस एब्जॉर्प्शन के कारण वो ये भी भूल जाता है कि किसने वो खिलौना दिया था। तो इसी तरह से जो हमारे भौतिक संसार में जो दो चीजें हैं, इच्छा और द्वेष, हमारा अटैचमेंट, जो चीजें अच्छी लगती हैं उसमें हम डूब जाते हैं, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती उसको हम अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। इच्छा और द्वेष, इन दो चीजों में इस तरीके से डूब जाते हैं कि हम भगवान जो कि उपस्थित हैं उनको नहीं देख पाते हैं। और कोई ऐसी पर्दा की आवश्यकता नहीं होती, वो पर्दा वास्तविकता में जो भगवान बता रहे हैं, योग माया समाप्त, वो पर्दा इच्छा और द्वेष का पर्दा है। इसीलिए भगवान बताते भी हैं फिर 28वें श्लोक में कि नहीं, 28 या उस 27 से 28, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, कि वास्तविकता में भौतिक संसार में लोग भगवान को नहीं देख पा रहे हैं केवल इसीलिए क्योंकि वो भौतिक संसार की इच्छा और द्वेष में अपने आप को एब्जॉर्ब करके रखे हैं। अगर उस एब्जॉर्प्शन से बाहर निकलेंगे तो भगवान को देख भी सकते हैं। एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे ये उदाहरण श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि जैसे अगर कोई तीर बनाता है, जब पहले युद्ध होते थे तो उसमें जो तीर बनाए जाते थे, तो तीर बनाने वाले को बहुत ज्यादा ध्यान से तीर बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि तीर बनाते समय उसको तीर की नोक कैसी रखनी है कि वो जिस जगह पे लगे, जिस जिस व्यक्ति या जिस वस्तु में जाके तीर लगे उसको भेदन कर दे, उसके अंदर चला जाए। तो इसलिए उसको नुकीला भी बनाना पड़ता है और साथ साथ तीर का वजन भी इतना नहीं होना चाहिए कि उसको जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच नहीं पाए। धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के साथ भी बैलेंस रखना चाहिए। तो तीर बनाने की कला बहुत बहुत अनोखी कला होती है, क्योंकि उसमें निशाने लगाने का नुकीलापन और ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन का, दोनों का बैलेंस करके तीर बनाना पड़ता है। मेटल भी इस प्रकार से डिजाइन करना होता है। तो अगर कोई व्यक्ति तीर बनाने में, एक बार ऐसा हुआ भी था भागवत में जो डिस्क्रिप्शन आता है कि एक व्यक्ति तीर बनाने में इतना बिजी था कि पूरे राजा के साथ सभी की पूरी पार्टी निकल गई, तब भी वो व्यक्ति को ध्यान ही नहीं आया कि क्या चल रहा है। वो व्यक्ति ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि क्या चल रहा है, और वो तीर बनाने में इतना एब्जॉर्ब था। तो इसी तरह से भौतिक संसार के ऑब्जेक्ट्स के पीछे हम इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि भगवान हमारे सामने भी आ जाए तब भी हम नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए वास्तविकता में जो पर्दा है, जो समावृता बोलते हैं, इच्छा और द्वेष का पर्दा होता है, उससे जैसे बाहर आते हैं तो भगवान को हम समझ सकते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीव भूतां। भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति है, इसके दूसरी तरफ परा प्रकृति मानी जाती है, और भौतिक प्रकृति चेतना रहित है और आध्यात्मिक प्रकृति जीव जीव भूत जो है वो चेतना के साथ है। और भौतिक प्रकृति एसेंशियली तीनों गुणों से मिलके बनी होती है, और तीनों गुणों का डिस्क्रिप्शन भगवद गीता अध्याय 14 में दिया गया है। इन तीनों गुणों के ऊपर काल, और इन तीनों गुणों के मेल से काल के नियंत्रण, और इन तीन गुणों के मेल से व्यक्ति के कर्म डिसाइड किए जाते हैं। इसीलिए भगवद गीता बताता है कि ईश्वर जीव प्रकृति काल, ये चार वस्तुएं सनातन हैं और कर्म सनातन नहीं है। कर्म क्योंकि कर्म के का इतिहास बहुत पुराना हो सकता है, परंतु कर्म सनातन नहीं है। इवन हमने पहले पढ़ा भी था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि भौतिक प्रकृति भी सनातन नहीं है, परंतु भौतिक प्रकृति सनातन है। उसका आविर्भाव और तिरोभाव, मतलब मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेशन हो सकता है, परंतु भौतिक प्रकृति का अस्तित्व सनातन पाया जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो मैं एक व्यापारी हूं और मैंने अपनी बुद्धि द्वारा कठोर श्रम किया है और बैंक में बहुत धन संचित कर लिया है, तो मैं सुख का भोगता हूं। किंतु मान ले यदि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा है तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूं। उसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख या दुख भोगते हैं। तो जैसा हम कर्म करते हैं, अगर कर्म अच्छा होता है तो सुख भोगते हैं, अगर कर्म खराब होता है तो उसका दुख भोगते हैं। आगे इसमें आता भी है कि भौतिक संसार में हम सोचते हैं कि हम क्रिएटर हैं और इंजॉयर हैं, मतलब हमने इस संसार को बनाया है और हम इस संसार को भोग करते हैं। परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम ना तो संसार को बनाने वाले हैं ना भोग करने वाले हैं, हम कोऑपरेट करने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं। भगवान संसार के भोक्ता हैं और भगवान इस संसार को बनाने वाले हैं, संसार के भोक्ता हैं, और भगवान के सुख प्राप्ति में हम उनके कोऑपरेटर, सहयोग करने वाले हैं। तो इन सब पांचों तत्वों की व्याख्या भगवद गीता में होती है और हमने ये डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, ये वाला पैराग्राफ। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। इसके उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वर्षा ऋतु जब आती है तो अन्न के द्वारा पोषण होता है, और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो जो भी फसलें वर्षा ऋतु में उगती थी वो सारी फसल सूख जाती है, अगले साल फिर से वर्षा आएगी तो फिर से फसल उगेगी। इसी तरह से भौतिक संसार कभी होता है, निश्चित अंतराल के लिए होता है, फिर लुप्त हो जाता है। इसको एक और तरह से समझाया जाता है भागवत के अंदर कि भौतिक संसार अपने आप में ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में है। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। तो एनीवे, उसको इस तरह से है कि जैसे सपोज कोई व्यक्ति, कोई वस्तु है हमारे सामने और उस वस्तु का उपयोग करने के लिए हम नहीं हैं, तो हमारे अनुपस्थिति होने के कारण वो वस्तु जो है वो उस वस्तु का कुछ उपयोग नहीं है। तो इसी तरह से भौतिक संसार से अगर सारे जीव चले जाएं और भौतिक संसार में वस्तुएं यहाँ पे रहें तो वस्तुओं का उपयोग करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उस तरह से भी भौतिक अभिव्यक्ति कभी होती है, कभी लुप्त हो जाती है, परंतु भौतिक शक्ति हमेशा रहती है, भौतिक प्रकृति हमेशा कार्यशील रहती है, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। इसलिए भौतिक प्रकृति झूठी नहीं है, भौतिक प्रकृति का अस्तित्व है, परंतु कभी उसका आविर्भाव होता है, कभी उसका तिरोभाव होता है। और भगवान इसको बताते हैं कि ये मेरी प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति भगवान की भिन्ना शक्ति है, भिन्ना शक्ति। 7वें अध्याय के साथ चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं। एक्चुअली जीव गोस्वामी एक जगह पे लिखते भी हैं, एक संदर्भ में लिखते हैं कि सारी भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति अगर तत्व के आधार पर देखेंगे तो सब कुछ आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान की चित्त शक्ति से निकल के आता है, परंतु उसका उपयोग चूंकि भौतिक संसार में होता है इसीलिए उसको भौतिक तरीके से माना जाता है। जैसे हम देखते हैं भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये इस संसार में भी है परंतु आध्यात्मिक संसार में भी है, गोलोक वृंदावन में भी पाया जाता है, क्योंकि ओरिजिनली भगवान की चित्त शक्ति से निकलता है और जब वो भगवान की भौतिक शक्ति में उपयोग होता है तो भौतिक तत्व के जैसा उपयोग होता है, आध्यात्मिक संसार में जब उपयोग होता है तो सच्चिदानंद होता है। तो ये जो भिन्न शक्ति यहाँ पे बताया गया है भगवद गीता में, ये भगवान की शक्ति है, भगवान से संबंधित है परंतु उसका उपयोग आध्यात्मिक तरीके से नहीं होता है। ईश्वर अर्थात परम भगवान की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति अर्थात बताया गया है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। तो अभी ये प्रश्न आता है कि अगर जीव उच्च प्रकृति है, परा प्रकृति है, और भौतिक प्रकृति अपरा है, जीव उत्कृष्ट है और भौतिक प्रकृति निकृष्ट है, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि उत्कृष्ट प्रकृति निकृष्ट प्रकृति के अंदर फंस जाती है? हम बोलते हैं कि हम इस संसार में फंस गए, माया माया में फंस गए, तो इसका क्या कारण होता है? ये प्रश्न अच्छा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऊंचा है, उच्च उच्च स्थिति पर है, वो नीचे वाले व्यक्ति की स्थिति से प्रभावित नहीं होता है, या नीचे वाला व्यक्ति उसको फंसा नहीं सकता या नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर है कि यद्यपि परा प्रकृति के जो जीव है, जो आत्मा है, वो उच्च प्रकृति में आता है, परंतु आत्मा का इस संसार में जो स्वभाव है वो बहुत कम है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के समान है, और जबकि जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक संसार है, ये अनंत है, तो जीव है हालांकि उत्कृष्ट स्थिति में है, परंतु अनंत भौतिक शक्ति में होने के कारण फंस जाता है। जैसे कभी कभी कोई कीड़ा आता है और वो मकड़ी के जाले में जाता है, उसके अंदर जाता है, फंस जाता है। मकड़ी का जाला देखने में इतना स्ट्रांग नहीं लगता है, परंतु जब कोई अंदर जाता है उसमें से फंस जाता है। इसी तरह से जैसे ही हम उत्कृष्ट प्रकृति होने के कारण अपने से नीचे वाली प्रकृति का भोग करने जाते हैं, भोग करते करने की इच्छा से उसको टच करते हैं, वो फंस जाते हैं। तो ये कारण है जिसके कारण से जीव इस संसार में फंसा हुआ है। और जीव और ईश्वर का अंतर भगवद गीता में आता है। जीव ईश्वर क्षेत्रज्ञ है और ईश्वर सभी के हृदय में, सभी के शरीरों के प्रति सचेत होते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि आपके मन में क्या चल रहा है ये मुझे पता नहीं होगा, और मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता नहीं होगा, परंतु परमेश्वर को, परमात्मा को सभी का पता होता है। इसलिए ईश्वर जो है, भगवान भगवान जीव से डिस्टिंक्टली पूरी तरह से अलग है। मतलब जीव और भगवान का कंपैरिजन इस प्रकार से नहीं हो सकता है कि दोनों परिमाण में समान है, दोनों का गुण समान हो सकता है, जो कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसमें उदाहरण भी हमने देखा था कि समुद्र की बूंद और समुद्र का पूरा समुद्र का जल, तो परिमाण के रूप से दोनों अलग अलग हैं और गुणों के रूप से दोनों समान हैं। और परमात्मा सभी के हृदय में वास कर रहे हैं, जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए निर्देशित करते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, फिर वो अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद दूसरे प्रकार के शरीर को प्रवेश करता है, जिस प्रकार हम वस्त्र पहनते उतारते हैं। जब आत्मा इस प्रकार देहांतर कर जाता है, तो उसे पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो हालांकि आत्मा के क्रियाकलापों के आधार पर उसको फल भुगतना पड़ता है, परंतु अगर वो सत्वगुण में स्थित होकर भगवत भक्ति का कार्य करना प्रारंभ करे, तो उसके पुराने कर्मों के फल भी बदले जा सकते हैं। इसलिए कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आप सभी तो आध्या स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत समय से हैं, कि जब हम ऐसा बताते हैं कि भगवान की भक्ति करके या भगवान का नाम करके हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं, एक जगह पे ऐसा लिखा जाता है कि होली नेम प्योरिफाइज द डिजायर्स, और एक जगह पे ऐसा लिखा जाता है कि होली नेम फैसिलिटेट्स एंड फुलफिल ऑल डिजायर्स, तो भगवान के नाम को चिंतामणि भी बोला जाता है, भगवान के नाम को चेतो दर्पण मार्जनम भी बोला जाता है। तो वास्तविकता में भगवान का नाम क्या करता है, इच्छाओं को पूरा करता है कि इच्छाओं को शुद्ध करता है? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से, थोड़ा सोचिए और अनम्यूट करके बताइएगा। प्रश्न शायद समझ में आया होगा कि भगवान का नाम या भक्ति की जो प्रोसेस है, भगवान के नाम को स्पेसिफिकली चिंतामणि बोला जाता है कि जो इच्छा हो पूरा हो जाती है, और साथ साथ भगवान के नाम को चेतो दर्पण मार्जनम के जैसा भी हम जानते हैं कि हमारी इच्छाओं को प्योरीफाई भी करता है। तो दोनों में से वास्तविक सच्चाई क्या है, और अगर दोनों सच्चाई है तो दोनों को कैसे हम समझ सकते हैं कि पूरा सच क्या है, किस तरीके से एग्जैक्टली फुलफिल होता है, किस तरीके से प्योरीफाई होता है? कोई अगर आंसर देना चाहता है तो अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं सोच के।
कृष्ण
यस शिवम प्रभु,
तो जैसे ऐसा भी समझ सकते कि जैसे चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान हमारा दिल मन शुद्धित कर देते हैं, पूरा हमारा मन जब शुद्ध हो जाता है तो जितने भी हमारा जब मन शुद्ध हो गया तो हमारा खुद प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं, तो हमारे लिए सब चिंतामणि जैसे होते हैं, भगवान की सब वस्तुएं सेवा हमको चिंतामणि जैसे लगने लग जाती है, कि हमारी सारी इच्छाएं तब पूर्ण अपने आप ही हो जाती है जब हमारा मन शुद्ध हो जाए, तो और कोई चीज ही नहीं रहती हमारे मन में, तो भगवान की सेवा के लगा तो सब कुछ तो मिल गया हमको फिर।
ओके ओके नाइस नाइस आंसर। और कोई बताना चाहेगा? आप बहुत क्लोज पहुंच गए, बट एक चीज था जो स्पेसिफिक थोड़ा मिस हो गया, कोई और बताएंगे? हरे कृष्णा। यस प्रभु,
नाम शुद्ध
तुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। यस प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा, शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। ओके, कोई और भक्त बताना चाहेंगे?
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जब हम लोग ऑफेंसिव चैंटिंग करते हैं तो उससे जैसे हरिनाम चिंतामणि में बताया कि मटेरियल ऑफलेंस मिलता है, मतलब और जब हम लोग शुद्ध नाम करेंगे तो हमारा प्योरिफिकेशन होके फिर शुद्ध भक्ति और कृष्ण प्रेम तक जाएंगे ये।
ओके मतलब ऑफेंसिव चैंटिंग करेंगे तो भौतिक इच्छा पूरी होगी और शुद्ध नाम लेंगे तो कृष्ण प्रेम मिलेगा। ओके ठीक है, नाइस। और कोई आंसर? रामलीला पर आप कुछ बताना चाहेंगे?
जी मैं एक्चुअली मुझे एक फोन आ गया तो मैं मिस कर गया वो चीज।
ठीक है, और कोई बताएंगे? Anyway, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे थोड़ा क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। आपने दोनों ने सही आंसर दिया और जस्ट उसमें एक पॉइंट है जो कि हमें देखना है। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? बोल, स्क्रीन दिखाई दे रहा है?
यस
इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं दो प्रकार की इच्छाएं दिखाई दे रही हैं, टू टाइप्स ऑफ डिजायर्स। एक डिजायर, एक एक इच्छा आती है हमारी वैल्यू सिस्टम के द्वारा और दूसरी इच्छा आती है हमारी कंडीशनिंग के द्वारा। वैल्यू सिस्टम मतलब जो कल्चर हमारे पेरेंट्स ने सिखाए हैं या वर्णाश्रम ट्रेनिंग के कारण या वैदिक ट्रेनिंग के कारण जो हमें संस्कार दिए जाते हैं वो एक वैल्यू सिस्टम कहलाता है। और वैल्यू सिस्टम से हमारी पर्टिकुलर श्रद्धा डेवलप होती है, पर्टिकुलर कंसेप्शन डेवलप होता है और उस कंसेप्शन से हमारी अभिलाषा डेवलप होती है। जबकि दूसरे में दूसरे तरफ आप देखेंगे तो एक होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या मैं चाहता हूँ, क्या मैं नहीं चाहता हूँ। वैल्यू सिस्टम का मतलब है क्या सही है, क्या गलत है। जैसे आप शास्त्र पढ़ते हैं तो क्लियरली पता रहता है क्या सही है, क्या गलत है, तो वो वैल्यू सिस्टम कहलाता है, उस तरीके की इच्छाएं। और दूसरा कंडीशनिंग से जो आती है उसका मतलब होता है मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या नहीं चाहता हूँ। उससे हमारा स्वभाव आता है और स्वभाव से अनर्थ आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो प्रकार की इच्छाओं में अंतर। वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं वो सही गलत हमें बताती हैं, हो सकता है उसको हम अपनी कंडीशनिंग के कारण नहीं कर पाए। कंडीशनिंग में आता है क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है हो सकता है वो सही नहीं हो, वैल्यू सिस्टम के आधार पर गलत हो, परंतु तब भी हम उसको करना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है अनर्थ। जब हम कुछ काम करना चाहते हैं परंतु वो वैल्यू सिस्टम के आधार पर गलत है उसको, तो ऐसी इच्छा को अनर्थ बोला जाता है। तो भगवान का नाम क्या करता है, जो हमारी वैल्यू सिस्टम की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषा, स्पेसिफिकली उसको अभिलाषा बोलते हैं, अभिलाषा को सही सही करता है, फुलफिल करता है और अनर्थों को प्योरीफाई करता है। अभिलाषा का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हम सभी लोग गाते हैं मोरो ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। तो कोई भी आध्यात्मिक इच्छा जो कि वैल्यू सिस्टम के द्वारा आ रही है उसको अभिलाषा बोला जाता है। और कोई भी ऐसी इच्छा जो कि हमारे प्रीवियस कंडीशनिंग के द्वारा आ रही है उसको अनर्थ बोला जाता है। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया है, आध्यात्मिक गुरु को सुख कर प्रसन्न करने की इच्छा को अभिलाषा बोला जाता है और अपोजिट सेक्स को एक्सप्लॉइट करने की इच्छा को अनर्थ बोला जाता है। इसी तरह से अच्छा नाम जप करना अभिलाषा बोला जाता है और किसी दूसरे को मारने की इच्छा या किसी दूसरे को परेशान करने की इच्छा अनर्थ कहलाता है। तो होली नेम दोनों काम करता है, चिंतामणि वो कार्य करता है अभिलाषा को पूरा करने के लिए और चेतो दर्पण मार्जनम काम करता है अनर्थ को पूरा करने के लिए। तो ये दोनों कार्य भगवान के नाम के द्वारा किए जाते हैं। आप दोनों लोग सही, आप जो आंसर दे रहे थे सही दे रहे थे, परंतु ये दोनों के दोनों फीचर उसमें मैच करना जरूरी है कि किस प्रकार से भगवान का नाम दोनों चीजों को सपोर्ट, दोनों चीजों को बैलेंस करता है। तो कोई भी आध्यात्मिक क्रिया जो है वो इस प्रकार से व्यक्ति को प्योरीफाई करने का कार्य करती है। कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, जो अनर्थ है, जो अपनी कंडीशनिंग के कारण जो आ रहे हैं वो वास्तविकता में हमारे स्वभाव में आ जाता है, नेचर में आ जाता है। तो पूरे इसी प्रकार से पूरे पहले जो हमने कर्म किए उनके फलों को बदला जा सकता है, इसलिए कर्म को शाश्वत नहीं बोला जाता है। इसलिए ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म में केवल चार शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस प्रभु।
हरे कृष्ण भैया। यस प्रभु जी, आपने बताया कि चिंतामणि और चेतो दर्पण मार्जनम, तो इसमें से अभिलाषा कौन सा है प्रभु जी दोनों में से, और अनर्थ कौन सा है?
अभिलाषा जो है वो मैं आपको फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ इसके, तो उससे बताना आसान रहेगा। ये देखिए, जो हमारे डिजायर्स के वैल्यू सिस्टम से जो आ रहा है वो अभिलाषा कहलाता है। स्पेसिफिक अच्छी इच्छाएं, आध्यात्मिक इच्छाओं को अभिलाषा बोला जाता है। तो जो अभिलाषा है उसके लिए भगवान का नाम जो है वो चिंतामणि जैसा कार्य करता है, अभिलाषा को पूरा करने का कार्य करता है। जबकि जो हमारा स्वभाव है, जो हमारे क्या अच्छा लगता है, क्या गलत, क्या नहीं अच्छा लगता है, वो स्वभाव के द्वारा अनर्थ आता है, और उस अनर्थ को भगवान का नाम जो है वो चेतो दर्पण मार्जनम जैसा कार्य करता है, मतलब उसको प्योरीफाई करता है। चित्त के अंदर चार भाग पाए जाते हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। तो जो अनर्थ किस प्रकार से एक्टिवेट होता है और भगवान का नाम उसको कैसे सही करता है, चेतना के अंदर सफाई करता है, जो भी बैड एलिमेंट्स है उसकी सफाई करता है।
Okay,
वो अच्छा है, yes. जो भी अनर्थ है उसको खत्म करता है, वो भगवान का नाम।
Okay.
चेतो दर्पण मार्जनम मतलब सफाई करना, झाड़ू के द्वारा सफाई करना मार्जनम बोला जाता है, और दर्पण Okay. चित्त को दर्पण जैसा बोला जाता है, तो उसकी सफाई करने को चेतो दर्पण मार्जनम बोलते हैं। ओके,
राइट, थैंक यू प्रभुजी, हरे कृष्णा, थैंक यू।
फिर ज्यादा समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भगवदगीता सार जो है ऑलमोस्ट पूरे भगवदगीता के सिद्धांत इसके अंदर आते हैं। अगर इसको बहुत जल्दी जल्दी हम करेंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, इसलिए मैं इस किताब को इतना स्पीडली नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो भगवान और जीव सभी प्रकार से समान है, दिव्य चेतनाओं के स्तर पर दोनों सभी दिव्य हैं, दोनों की चेतनाएं। ऐसा नहीं है कि यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। भगवदगीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। मॉडर्न साइंस ये बताता है कि जीवन के लक्षण जो हैं वो केमिकल के द्वारा आ जाते हैं, रसायन के द्वारा आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी वो लोग करते हैं, फिर बताते हैं कि केमिकल्स को मिलाएंगे वो लाइफ आ जाते हैं। परंतु भगवदगीता इस सिद्धांत, कोई भी आध्यात्मिक शास्त्र इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है कि केवल पदार्थ को आप संयोगित करो और उससे चेतना आ जाए। चेतना आत्मा का लक्षण है, कभी भी भौतिक वस्तुओं से नहीं आ सकता है। हाँ, चेतना भौतिक वस्तुओं से प्रभावित भले ही हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि इसका उदाहरण इसमें आ रहा है कि जैसे अगर कोई रंगीन कांच है उससे परावर्तित होता है जब प्रकाश, तो उसी कलर का दिखाई देता है। तो भौतिक परिस्थितियों में आने से चेतना पे प्रभाव होता है, जैसे पशुओं की चेतना उतनी विकसित नहीं होती जितनी मनुष्यों की विकसित होती है। मनुष्यों में भी अलग अलग कैटेगरी के मनुष्य होते हैं, उनकी चेतना अलग अलग प्रकार से होती है। तो चेतना प्रतिबिंबित हो सकती है, परंतु चेतना का स्रोत जो है वो आध्यात्मिक है। अब हमारी चेतना ऐसी विकृत हो सकती है, हमारी चेतना ऐसी कंटेमिनेट हो सकती है, परंतु भगवान की चेतना कंटेमिनेट नहीं हो सकती। इसलिए भगवान बताते हैं माया अध्यक्ष न प्रकृति। अक्ष, अक्ष ये मैंने पहले भी बताया, अक्ष मतलब आंख, अधि अक्ष मतलब आंख के नीचे। अगर हिंदी में देखें, ट्रेडिशनल हिंदी में हम देखें, तो भगवान बोल रहे हैं कि ये प्रकृति जो है, संसार जो है, ये मेरी आंख के नीचे काम करता है। आंख के नीचे काम करता मतलब भगवान उसको देखते हैं, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये भगवान के लिए हमेशा सत्य है। जब भगवान भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तब भी उनकी चेतना दिव्य होती है, और जब भगवान आध्यात्मिक संसार में होते हैं तो भी उनकी चेतना दिव्य होती है। अगर भगवान की चेतना दिव्य नहीं होती या वो उनकी चेतना पर प्रभाव पड़ता भौतिक संसार का, तो फिर भगवान की भगवदगीता बोलने का इतना कुछ मतलब नहीं, क्योंकि फिर वो भगवदगीता तो सामान्य मनुष्य जैसी होती। क्योंकि जैसा हम आप जैसे जो व्यक्ति हैं भौतिकता से डूबे हुए हैं, उनके बोलने में इतनी शक्ति नहीं होती है। भगवत गीता दिव्य है, इससे पता चलता है कि भगवान की चेतना हमेशा दिव्य होती है। तो भगवान इस भौतिकता से कभी कंटेमिनेट नहीं होते हैं, हमारी चेतना इससे दूषित होती है। और भगवत गीता हमें यही बताती है कि हमें इस चेतना को कैसे शुद्ध करना है, और जब चेतना शुद्ध हो जाएगी तो हमारे सारे कर्म भगवान की इच्छा से जुड़ जाएंगे, और तब हमें वास्तविक सुख प्राप्त होगा। तो भक्ति का मतलब है कर्मों को शुद्ध करना, हमारी क्रियाओं को शुद्ध करना भक्ति कहलाता है, परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाता है। भक्ति की पद्धति के द्वारा हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं, और जब हम शुद्ध कर्म करते हैं तो उसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति में किए गए कर्म सामान्य कर्म जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भले ही भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखे, किंतु ऐसा अल्पज्ञानी मूर्ख यह नहीं जानता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। तो भगवान के ऊपर तो वैसे भी भौतिक संसार का प्रभाव नहीं होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पूर्ण शुद्ध भक्त होता है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव नहीं होता है। भगवान गीता में बताते हैं ना, इति माम यो भी जानाति कर्म भी न संवर्धयति, कि जो ये जान जाता है कि मेरे ऊपर ये भौतिक संसार के कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले इस प्रभाव, ना तो मुझे कोई कर्म बांधता है ना मुझे कोई कर्म करने की इच्छा है, कर्म के फल को भोगने की इच्छा है। और जो ऐसा जान जाता है उसको भी भौतिक संसार के कर्म प्रभावित नहीं करते। तो भक्त या भगवान के कर्म देखने में हो सकता है कि इस संसार के लगे, परंतु वो तीनों गुणों से परे होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का एक फोटो आपने देखा होगा, प्रभुपाद जी एक बैंक की लाइन में, एक बार एयरपोर्ट की लाइन में भी प्रभुपाद जी थे, और एक पिक्चर है जिसमें प्रभुपाद जी बैंक की लाइन में खड़े हैं। और प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने गया था या जाता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि ये साधु यहाँ बैंक में क्या कर रहा है, परंतु उनको पता नहीं है कि उनके क्रियाकलाप, उनके बैंक में आने का कारण और मेरे बैंक में जाने का कारण एकदम अलग अलग। मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूँ, और सामान्यतः लोग जो जाते हैं वो अपने कार्य के लिए, अपने भोग के लिए जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है समझना कि हम इस सिद्धांत को समझें कि भक्त को केवल हम उसके बाहर के अपीयरेंस से नहीं देखें। बाहर के अपीयरेंस से देखेंगे तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम भौतिकता से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं, और जब भौतिकता से बाहर आ जाते हैं तो हम मुक्त कहलाते हैं। और जो बद्ध चेतना है उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है कि हम सोचते हैं कि हम तो मिथ्या चेतना का प्राकृत इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का उत्पाद मान बैठते हैं, यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को नहीं समझ सकता। भगवद गीता का प्रवचन मनुष्य को देहात्म बुद्धि के जीवन से मुक्त करने के लिए ही हुआ था, और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि के जीवन से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कार्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि यह भौतिक शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। यह मुक्ति का डेफिनेशन है जो कि आगे आएगा भी, भागवत में भी, भागवत का भी उदाहरण दिया है, मुक्ति हेतु अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कि भौतिक चेतना से मुक्ति, भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। दैट मीन्स मुक्ति कोई फिजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई व्यक्ति इस संसार में रहे तब भी वो अगर भौतिक चेतना से पूरी तरह से स्वतंत्र है तो उसको मुक्त पुरुष बोला जाएगा। भौतिक संसार की कलुषित चेतना से छूट के अपनी शुद्ध चेतना में स्थित होना, इसको मुक्ति बोला जाता है। और इस संसार में जो व्यक्ति मुक्त अवस्था में पाए आते हैं उनको जीवन मुक्त बोला जाता है। भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इस शुद्ध चेतना को जागृत करना है, और इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह अब विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। भगवदगीता के शुरू से अंत तक भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, और लास्ट में पूछते हैं कि आपको पूरी तरह से शुद्ध चेतना प्राप्त हुई है कि नहीं हुई। भगवान बताते हैं अगर नहीं हुई है तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भी हैं कि अगर भगवान इतने दयालु हैं कि फिर से सब ज्ञान देने के लिए तैयार भी थे। तो शुद्ध चेतना क्या कहलाती है? शुद्ध चेतना का मीनिंग है कि भगवान का जो आदेश है उसके आधार पर काम करना, भगवान के आदेश के आधार पर अपने कर्म को नियोजित करना शुद्ध चेतना कहलाता है। और चेतना का डेफिनेशन अगले तात्पर्य में, अगले पैराग्राफ में बताया है। चेतना का मतलब है मैं हूं की भावना। तो जब चेतना का मतलब है कि आई एग्जिस्ट, मैं हूं यहाँ पर, परंतु जब ये चेतना दूषित होती है तो उसका मतलब होता है कि मैं भोक्ता हूं और मैं सर्वे सर्वा हूं, ये संसार मेरे कारण चलता है, मैं संसार का स्वामी हूं, ये भौतिक चेतना कहलाती है। भौतिक चेतना के विशेष रूप से ये दो विभाग हैं। हमने अभी कुछ देर पहले इनको डिस्कस किया था कि मैं सृष्टा हूं और मैं भोक्ता हूं, जबकि वास्तविकता में परमात्मा सृष्टा और भोक्ता है, हम उनके अंश हैं, ना तो हम सृष्टा है ना भोक्ता है, हम केवल सहयोगी हैं। जैसे कोई मशीन का पुर्जा मशीन के साथ सहयोग करता है, शरीर का अंग शरीर के साथ सहयोग करता है, और शरीर में हाथ पांव आंखें हैं, परंतु वास्तविक भोक्ता पेट है, पैर चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, परंतु सारे अंग पेट को संतुष्ट करते हैं, इसलिए उदर जो है वो प्रधान कारक है जो कि शरीर का पोषण करता है। अगला उदाहरण आया है जड़ को सींच के वृक्ष का पोषण करना, उदर का भरण करके शरीर का पोषण करना। इस तरह से भगवान को अगर हम पोषित, भगवान को अगर हम समर्पित करेंगे सारे क्रियाकलापों को, तो भगवान भोक्ता रहेंगे और हम उनको प्रसन्न करेंगे, उससे हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें आपसी सहयोग की आवश्यकता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचें कि उदर को भोजन ना देकर उसे स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास के संबंध जैसा भी है, यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए, यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की वृत्ति होती है, किंतु क्योंकि इस दृश्य जगत की सृष्टा परमेश्वर में ये वृत्ति है। ओके, इसके बाद अगला जो इसमें सेक्शन आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ तक कि केवल भौतिक संसार ही नहीं, केवल आत्माएं नहीं, अपितु निर्विशेष ब्रह्म भी भगवान के अधीन है। ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा हम, जो निराकार ब्रह्म बोलते हैं, भारत में आपने देखा होगा बहुत सारे साधुओं के आगे ऐसा लगा रहता है ब्रह्मलीन साधु। जब मैं इस्कॉन में आने के पहले तो आसाराम बापू के आश्रम में जाता था, तो उनके 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 कोई गुरु हैं ब्रह्मलीन लीलाधर साह। तो उस समय मैंने पूछा था ब्रह्म का मतलब क्या होता है, उस समय मैं इस्कॉन में तो नहीं आया था, तो ब्रह्मलीन का मतलब पूछा था, तो मुझे बहुत ही वेग टाइप का आंसर मिला, जो वहाँ के वहाँ पे एक बुक स्टॉल टाइप का था और वहाँ पे एक व्यक्ति बैठते थे, तो उनको खुद ही नहीं पता था कि ब्रह्म क्या कहलाता है। उन्होंने मुझे घुमा फिरा के आंसर दिया और इस प्रकार से आंसर दिया कि वो भी कंफ्यूज जैसे लगे, मैं भी कंफ्यूज जैसा था। तो ये सब बहुत आसान वस्तुएं हैं, परंतु जिसने प्रामाणिक व्यक्ति से नहीं सुना है, नहीं सीखा है, उसके लिए ये सब चीजें बहुत कठिन हो जाती हैं समझना। तो ब्रह्म का मतलब सिंपल बताया जा रहा है, सूर्य के किरणों के रूप में, सूर्य के किरणों के रूप में की गई है। निराकार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निराकार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति है और परमात्मा की धारणा उसी प्रकार से है। और भगवान वास्तविकता में तीन रूपों में पाए जाते हैं, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। निर्विशेष ब्रह्म के द्वारा उनका सत फीचर होता है और चित फीचर जो है, सत और चित फीचर परमात्मा के द्वारा, और सच्चिदानंद फीचर भगवान की अनुभूति के द्वारा होता है। और जो निराकारवादी होते हैं, इसमें बताया जाता है कि उनके अंदर कम ज्ञान होता है। भगवद गीता में भगवान क्लियरली लिखते हैं कि वो लोग अल्प ज्ञानी होते हैं, जो कि परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। जो दिव्य व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है उनका स्वरूप है और वो सभी के स्वामी हैं। ओके, अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। किसी का अगर कोई प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ तो पूछ सकते हैं। ओम भारद्वाज प्रभु।
यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विश यू ए वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। आपके अवतरण दिवस के दिन आपको बहुत बहुत बधाई हो प्रभु जी।
अवतरण, आपने अवतरण का मीनिंग आपको पता है क्या कहलाता है?
बड़े 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 साधु के लिए हम बोल सकते हैं प्रभु जी।
भगवान उनके नित्य सिद्ध पार्षदों का। तो हम लोग इसी संसार के हैं, इसी संसार में स्ट्रगल करते करते अभी चल रहा है, इसलिए अवतरण शब्द ठीक नहीं है। हाँ, जन्मदिन बोल सकते हैं, जन्म तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं। ओके, धन्यवाद। तो
थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. एक्चुअली फॉर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रभु जी आपका जो प्रभाव है मतलब हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर काफी ज्यादा है और बहुत सारे लोग आपसे बेनिफिट हो रहे हैं. आपका जो प्रश्न का उत्तर देने का जो तरीका है बहुत स्ट्रेट एंड वेरी क्लियर. तो मतलब आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस एंड वेरी हैप्पी प्रभु जी. बहुत बहुत बेनिफिट मिला है हमें रियली ए लॉट ऑफ बेनिफिट. सो थैंक यू एंड हम भगवान से भगवान श्री कृष्ण से श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको दिन दूने रात चौगनी और भक्ति में उन्नति हो और सभी मानव जाति का आप कल्याण करो हमेशा अपने ज्ञान से.
आप प्रार्थना करिए तो मैं भक्ति जिंदगी भर भक्ति करता रहूं.
हाँ जी यस प्रभु जी. मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी की अभी आपने एक्सप्लेन किया था सुपीरियर एनर्जी एंड इंफीरियर एनर्जी ऑफ गॉड एंड आप मतलब अभी बताया भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने आपने बताया था कि जो हमारी जीवात्मा है वो सुपीरियर एनर्जी है बट क्योंकि वो बहुत माइन्यूट है और इसलिए वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आ जाती है कंटेमिनेट हो जाती है. तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी दूसरी जो बुक्स हैं प्रभुपाद की उसमें लिखा हुआ है कि जो जीवात्मा है वो तथस्थ शक्ति है मतलब एक है सुपीरियर एनर्जी पराशक्ति अपराशक्ति और तथस्थ शक्ति मार्जिनल एनर्जी. तो प्रभु जी फिर कैसे हम करें कि कभी कभी हम जीवात्मा को सुपीरियर एनर्जी बोलते हैं कभी कभी मार्जिनल एनर्जी बोलते हैं.
बहुत अच्छा प्रश्न है. तटस्थ शब्द का मतलब होता है तट का मतलब आप जानते हैं ना नदी का किनारा को तट बोला जाता है बैंक ऑफ द रिवर. तो तटस्थ मतलब तट पे स्थित. तो तट पे जो भी वस्तु स्थित होती है वो कभी कभी पानी में भी आ सकती है कभी पानी के बाहर आ सकती है. होता है कि नहीं जब कभी बाढ़ आती है ज्यादा पानी गिरता है तो तट पानी में भी चला जाता है कई बार पानी जब ऊपर आ जाता है. तो इसी तरह से तटस्थ शक्ति का मतलब ही है कि जीव के पास ये उसकी फ्री विल होती है इच्छा होती है कि वो भौतिक शक्ति में भी कार्य कर सकता है अगर चाहे तो आध्यात्मिक शक्ति में भी कार्य कर सकता है. तो या तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर आ सकता है या बहिरंगा शक्ति के में आ सकता है. और किस सेंस में उसको सुपीरियर बोला जाता है क्योंकि हमने आज डिस्कस भी किया क्योंकि भौतिक प्रकृति के अंदर चेतना नहीं पाई जाती है जबकि आध्यात्मिक प्रकृति में चेतना होती है और जीव में चेतना होती है. तो इस चेतना की उपस्थिति के कारण जीव जो है वो सुपीरियर नेचर उत्कृष्ट प्रकृति बोला जाता है. जैसे हम देखें कोई पदार्थ में चेतना नहीं होती है इसलिए वो पदार्थ अपने आप कुछ नहीं कर सकता. जैसे ये लैपटॉप है ये लैपटॉप यहाँ पे रखा है यहाँ रखा रहेगा कभी कुछ नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि इसके बगल में मैंने एक और लैपटॉप रख दिया तो दो लैपटॉप से पाम टॉप निकल के आ गया. ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है. परंतु जीवों के अंदर चेतना होती है इसलिए उनको उच्च माना जाता है पदार्थ से उच्च माना जाता है. ओके
ओके ओके एंड मेरे इसी से रिलेटेड पूरी थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि पराशक्ति और अंतरंग शक्ति एक ही बात है या फिर ये इसमें भी अंतर है दो अलग अलग एस्पेक्ट है ये शक्ति के जैसे परा अपरा एंड अंतरंग बहिरंग ये दोनों पैरेलल है क्या मतलब इक्वल है या अलग अलग है.
परा शब्द जो संस्कृत में है उसका मतलब सुपीरियर होता है.
हाँ जी
अंतरंग शक्ति को पराशक्ति बोलते हैं जीव शक्ति को भी पराशक्ति बोला जाता है.
राइट
और अपराशक्ति मतलब इंफीरियर एनर्जी भौतिक शक्ति को बोलते हैं.
ओके यार सेम ओके